हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के इस बुधवार के कार्यक्रम में। हमने अब तक भगवद गीता के पहले अध्याय के दो श्लोक लिए हैं और इन दो श्लोकों में धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन, यहीं से ही चर्चा शुरू हुई है। हालांकि पहला श्लोक धृतराष्ट्र द्वारा कहा गया, दूसरा श्लोक संजय द्वारा, और धृतराष्ट्र ने जो दो प्रश्न पूछे, मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया रणभूमि में जब वो एकत्रित हुए। हालांकि संजय वो धृतराष्ट्र से कह सकते थे कि ये कोई प्रश्न हुआ कि वो लोग रणभूमि में एकत्रित हुए हैं और वो भी युयुत्सव, वो भी इच्छा से, लड़ने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, फिर ये प्रश्न कोई पूछ रहा है कि क्या किया उन्होंने। परंतु संजय यहां पर धृतराष्ट्र को ये नहीं कह रहे कि आपने गलत प्रश्न पूछा, बल्कि संजय वो धृतराष्ट्र को मन ही मन धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने सही प्रश्न पूछा, क्योंकि इसी प्रश्न के द्वारा मैं भगवद गीता सुन पाऊंगा और आपको सुना पाऊंगा और आप भी सुन पाएंगे। तो संजय मन ही मन वो बहुत प्रसन्नचित हुए और इसलिए संजय अब जो सुनाने जा रहे हैं, जो शुरू कर दिए हैं पिछले श्लोक से, संजय बहुत ही उत्साह से, उत्कंठा से, तीव्रता से इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वो अपने आप को तैयार किए हैं। तो पिछले श्लोक में किसे याद है हमने क्या चर्चा की? संजय ने अपना उत्तर कैसे शुरू किया, कैसे शुरू किया? पिछले हफ्ते का श्लोक याद है? दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस् तदा आचार्यं उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत। राजा किसे उल्लेख किया? दुर्योधन को। और हमने इसके कारण भी देखे कि संजय वो राजा क्यों कह रहे हैं दुर्योधन को, क्योंकि एक तो एक व्यंग की दृष्टिकोण से वो धृतराष्ट्र को बताना चाहते हैं कि असल में राजा तो दुर्योधन ही रहा, क्योंकि वही सब कुछ कराते रहा था आपसे, और दुर्योधन अपने रथ से उतरा है। और क्यों वो रथ से उतरा? क्योंकि दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस् तदा, उसने देखा पांडवों की सेना को और कौन सी रचना थी, वो तो व्यूह रचना हुई। कौन सी व्यूह रचना थी पांडवों की? वज्र व्यूह। और किसने रची थी वो? अर्जुन ने। और कौरवों की? चक्र व्यूह। और वो किसने? भीष्म पितामह ने। तो सब यहां पर तैयारी है, दोनों भीष्म और अर्जुन वो अपने अपने सेनाओं को इस प्रकार की व्यूह रचना में रचे हुए। और दुर्योधन ने जब देखा तो दुर्योधन वास्तविक रूप में भयभीत हो गया और आश्चर्यचकित। और कारण यह था कि दुर्योधन सोच रहा था कि 13 वर्ष वनवास में रहने के पश्चात बावजूद इतनी सुंदर और इतनी भव्य भयावह सेना कैसे इन्होंने खड़ी कर ली, क्योंकि रण में वन में वो लोग वहां पर कुछ ठीक से खाने के लिए नहीं, और हो सकता है कि वहां पर उनकी कोई प्रैक्टिस भी नहीं हुई हो जो यहां पर दुर्योधन अपने ट्रेनिंग में लगा रहता था। परंतु फिर भी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हर समय उनके साथ थे। ये भी एक आश्चर्य था कि अर्जुन ने अस्वीकार कर दिया नारायणी सेना, उसके पश्चात इतनी बड़ी सेना कहां से खड़ी कर दी। तो अब दुर्योधन ये आगे के श्लोक में वो आचार्य उपसंगम्य द्रोणाचार्य के निकट जाकर क्या कहता है। तो ये जो श्लोक है ये श्लोक दुर्योधन द्वारा कहा गया, या संजय कह रहे हैं कि दुर्योधन ने क्या कहा। तो ये पीछे दोहराइए मेरे, पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम शमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम शमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम शमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यहां पर हम उसे याद रखना चाहिए कि अब ये सारे जो श्लोक दुर्योधन कह रहा है या संजय बता रहे हैं दुर्योधन के विषय में, वो एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ की भाषा बोल रहा है दुर्योधन। और राजनीति के अलग अलग प्रकार की जो नीति है इसकी चर्चा हमने की थी, साम नीति, दाम नीति, दंड नीति, भेद नीति। और इन चारों में से जो सबसे अधम नीति है वो है भेद नीति। और दुर्योधन वो भेद नीति को अपनी भाषा में लाकर वो द्रोणाचार्य से वार्तालाप अपना प्रारंभ किया है। तो यहां पर अब हम देखेंगे कि जो राजा वचनम अब्रवीत, कि वचन और अब्रवीत ये होने की आवश्यकता नहीं थी, कि वचन कहते हैं शब्दों को और अब्रवीत कहने को, तो ये दोनों की आवश्यकता नहीं थी। क्यों कहा गया, संजय ने ऐसे क्यों कहा, ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं संजय, क्योंकि अब दुर्योधन जो वाणी बोल रहा है उसमें डबल मीनिंग है। उसके हर एक शब्द के अंदर कोई दूसरा अर्थ छिपा हुआ है, जो असली अर्थ है उसके अलावा दूसरा अर्थ छिपा हुआ है। तो हम वो क्या क्या अर्थ दुर्योधन छिपाए हुए है, कैसे वो व्यंग्यात्मक दृष्टि से द्रोणाचार्य के समक्ष जाकर क्या राजनीति के शब्द इस्तेमाल कर रहा है वो देखेंगे। तो यहां पर पश्यताम, पश्यताम फिर से देखो, पश्येतान, पश्येतान का अर्थ है दुर्योधन जाकर वो द्रोणाचार्य से कहते हैं देखो, इस टोन में पश्येतान पांडु पुत्राणाम आचार्य, आप आचार्य हैं, महती चमुम, ये सारे जो सेना इकट्ठा किए हैं इतनी बड़ी महती, इतनी बड़ी चमुम सेना इकट्ठा किए हैं, व्यूढ़ाम, और किसने ये पूरी सेना को यहाँ पर खड़ा किया है, इसके सेनापति यहाँ पर कौन है, द्रुपद पुत्रेण, और वो कौन है, तव शिष्येण, आपके शिष्य हैं, धीमता, बहुत बुद्धिमान, धीमता का अर्थ है बहुत बुद्धिमान। तो इस श्लोक में हम देखेंगे कि सबसे पहले तो द्रोणाचार्य की उदारता बताई गई है कि द्रोणाचार्य कितने उदार थे वो, और दुर्योधन की अधमता, इस श्लोक में दुर्योधन की अधमता और द्रोणाचार्य की उदारता। और दुर्योधन यहां पर वो मूर्तिमान कली की भूमिका निभा रहा है। इसकी चर्चा भी हमने कई बार की है। कलयुग जो है वो कलह प्रधान युग है। तो कली मूर्तिमान वो कौन से युग में, उसने किस व्यक्ति से कुछ आदान प्रदान किया था, किसे पता है? श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। परीक्षित महाराज, तो परीक्षित महाराज जब उनके बाद ये कलयुग शुरू होने वाला था, तो कली मूर्तिमान वो परीक्षित महाराज के राज्य में अपना साम्राज्य कहीं पर तो रखने के लिए वो आया था, शुरू करने के लिए कली। परंतु परीक्षित महाराज ने धक्के मारकर कली को बाहर निकाल लिया। परंतु कली, वो परीक्षित महाराज दंड देने वाले थे, मारने वाले थे, खत्म करने वाले थे कली को, परंतु कली वो गिड़गिड़ाने लगा और कुछ जगह मांगने लगा कि मुझे मारिए मत, मुझे कुछ तो जगह दीजिए कहीं पर तो रहने के लिए। तो परीक्षित महाराज उस समय कहे कि ठीक है, ये जो चार प्रकार के अधर्म हैं, मांसाहार, जुआ, परस्त्री पुरुष गमन और नशापान, इनमें विराजो। तो कली फिर से परीक्षित महाराज के पास जाकर कहते हैं, परंतु आपके राज्य में तो ये सब कुछ है ही नहीं। सोचिए, कोई ऐसा राज्य जहां पर ये सब कुछ है ही नहीं। आजकल यदि हम पूछें, तो आजकल तो ये पूछना होगा कि भगवान का नाम कीर्तन, भगवत सेवा, फिर भक्तों का संग, ये सारी चीजें यदि पूछे तो कोई कहेगा ये तो आजकल है ही नहीं। इसके उल्टा ये चार चीजें, इसके विषय में यदि हम अचरज करें तो लोग हम पर अचरज करते हैं। तो ये सब चीजों पर अचरज कर रहे हैं आप कि ये सब चीजें एक जमाने में थी नहीं और अभी हैं, तो ये कोई आश्चर्य की बात? अरे तो होनी चाहिए ना। मैं अक्सर मेरे एक मित्र के बारे में बता रहा था कि मेरा एक मित्र, वो मुझसे एक बार आकर पूछा, उसे पता लगा कि ये जो है ये वायुसेना में थोड़ा हटकर है ये व्यक्ति, ये नॉर्मल नहीं है। तो मेरे को आकर पूछता है, अरे मैंने सुना तुम कोई प्रकार का मांस वगैरह नहीं खाते, अंडा भी नहीं खाते। मैंने कहा तुमने गलत सुना। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मैं तो कांदा लहसुन भी नहीं खाता। क्या? तो उसे लग रहा था कि मैं उसी की तरह किसी की तरह नॉर्मल होऊंगा। मैंने जब ये कह दिया कांदा लहसुन भी नहीं खाता, तो वो एक हार्ट अटैक आने वाला था उसे, थोड़ा माइल्ड आ गया था, शायद उसके मांस ने उसको पकड़ लिया। फिर बाद में वो पूछता है कि तुम फिर ये सुना नशा वगैरह ये सब भी नहीं करते? ना, कोई भी प्रकार का, मतलब वो बियर तो चलता है ना, बियर भी क्या है? मैंने तुमने गलत सुना। हाँ, बियर पीते है ना? बोला नहीं, चाय कॉफी भी नहीं पीते। लिया तुम चाय कॉफी? तो फिर वो पूछता है कि अच्छा, वो फिर अपना जुआ तो खैर इधर ज्यादा होता नहीं, तो जुए के विषय में इतना कुछ उसने नहीं पूछा, परंतु गर्लफ्रेंड यार तुम्हारे पास नहीं? यहाँ पर देखो तो, तुम एक इतने नेशनल टेनिस प्लेयर हो और इतने हो सकते हैं ना, एक भी नहीं, एक भी नहीं। वो तो दूर की बात है, हम तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूं। तो उसका रिमार्क था, तुम जी क्यों रहे हो यार? मेरे इसके लिए तो लोग जीते हैं, तुम ये कुछ नहीं, तुम फिर इससे अच्छा फिर तुम आत्महत्या। बोला यार वो भी ऑलरेडी तुम कर ही रहे हो। तो ये जो मूर्तिमान कली है, ये मूर्तिमान कली के ये सारे एजेंट्स हैं, और वो मूर्तिमान कली दुर्योधन के रूप में उस समय था। जो अब है वो दुर्योधन के रूप में द्वापर युग में मूर्तिमान कली था। तो मूर्तिमान कली ये सारे चीजों को क्यों फैलाए हुए हैं? कलह, कलह पैदा करने के लिए। और वही यहां पर दुर्योधन शुरू किया है करने के लिए। कह रहे भाई दोनों एकत्रित हुए हैं अब लड़ाई करने के लिए ना, अब इतना सब कुछ हो गया, 13 वर्ष वनवास और दुर्योधन ने क्या कुछ षड्यंत्र नहीं रचे, और अंततः अब बात यहां तक पहुंच गई कि दोनों सेना आमने सामने लड़ाई करने के लिए, परंतु इसमें भी वो और उसने कलह पैदा करना चाह रहा है अपने इन शब्दों से। इसलिए दुर्योधन अपने शब्दों के द्वारा ही वो उकसा रहा है, द्रोणाचार्य को उकसा रहा है, क्योंकि दुर्योधन जानता है, क्या जानता है दुर्योधन, कि द्रोणाचार्य जो है, द्रोणाचार्य ने सिखाया है हम सबको कैसे युद्ध करना। तो और कभी दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर कभी बातचीत नहीं किया करता था, कभी द्रोणाचार्य को पूछा भी नहीं। अब अचानक युद्ध भूमि में सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास जाना, तो द्रोणाचार्य भी समझ गए कि दुर्योधन जैसे जो लोग होते हैं, जब क्या बोलते हैं उसको, कामापुरता मामा, ये वो है कि अभी इसका कोई काम निकल रहा है या काम निकलने वाला है, निकालने वाला है, इसलिए आया है दो मिलाते हुए मेरे पास। तो द्रोणाचार्य भी जान रहे, तो दुर्योधन अब वो द्रोणाचार्य को उकसाते हुए, क्योंकि द्रोणाचार्य उन्होंने जो कुछ सिखाया तो दुर्योधन जानता था कि अपने गुरु के सामने जो शिष्य है वो हड़बड़ा जाएगा। इसलिए सबसे पहले दुर्योधन, देखिए बहुत चालाक है, सबसे पहले वो द्रोणाचार्य के समझ जाकर उकसा रहा है कि आप लड़ाई में कमतरता बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यदि आप कमतरता करोगे तो अर्जुन जो आपका प्रिय शिष्य है, अर्जुन आपका प्रिय शिष्य, वो फिर हड़बड़ाएगा नहीं आपको मारने के लिए और अन्य किसी को मारने के लिए। इसलिए दुर्योधन जानता था कि अर्जुन से मैं तो जीत नहीं सकता, वो जानता था, मन ही मन वो जानता था अर्जुन के सामने कोई नहीं जीत सकता, मैं नहीं जीत सकता। कर्ण थोड़ा है मैच का, परंतु वो कर्ण भी आया नहीं रणभूमि में, क्योंकि भीष्म ने कह दिया कि जब तक ये रहेगा सूत पुत्र, भीष्म ने उसे सूत पुत्र कह दिया था, तो फिर कर्ण भी जब तक ये भीष्म देव है रणभूमि में मैं नहीं आऊंगा। तो दुर्योधन और डर गया कि एकमात्र सहारा था वो कर्ण, जो अर्जुन से लड़ सकता था, वो भी बैठा हुआ है कैंप में, वो भी नहीं आया। तो फिर यहां पर दुर्योधन डरा हुआ वो ये सोच रहा है कि यदि द्रोणाचार्य को सामने कर दें तो अर्जुन अपने गुरु को देखकर, क्योंकि दोनों में बहुत ही प्रिय संबंध था, द्रोणाचार्य और अर्जुन ने बहुत प्रिय संबंध, तो द्रोणाचार्य को देखकर अर्जुन थोड़ा डर जाएगा, हिल जाएगा। इसलिए वो यहां पर अपनी मूर्तिमान जो कली के गुण हैं उसे लेकर वो कलह पैदा करना चाहता है द्रोणाचार्य में और अर्जुन में और अन्य पांडवों के बीच में। तो दुर्योधन के अब बहुत ही कापट्यपूर्ण शब्द कौन कौन से हैं श्लोक में वो देखेंगे, और उनके पीछे दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है। तो सबसे पहले दुर्योधन वो कहता है पश्यैतान, पश्यैतान, द्रोणाचार्य को जाकर कह रहा है कि अब देखिए उसका टोन ये है, देखो, देखिए वही शब्द को हम किस तरीके से कहते हैं उसका अर्थ बदल जाता है। इसलिए भाषा के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारी भाषा केवल कौन से शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो शब्द हम किस टोन में बोलते हैं उसके ऊपर भी निर्भर है। नमस्ते, आइए, यदि इसको मैं लिखूं पेपर पर तो किसी को क्या लगेगा, अरे मैं किसी का स्वागत कर रहा हूं, नमस्ते आइए। परंतु यदि कोई सुनेगा मुझे कि मैंने कैसे नमस्ते किया और कौन सा डेसिबल लेवल था आइए बुलाने का उसको अंदर, तो वो सब कोई सुनेगा तो उसका अर्थ बिल्कुल विपरीत रहेगा। तो यहां पर ये कौन सा टोन है दुर्योधन का, पश्यतान। देखो कौन है यहां पर सामने आपके, तो यहां पर द्रोणाचार्य की जो क्षत्रिय प्रवृत्ति है उसे उकसाने के लिए दुर्योधन सबसे पहले इस टोन में बोल रहा है, पश्यतान। देखो तो यहां पर एक प्रकार से दुर्योधन वो बहुत अपना अपमानजनक शब्द इस्तेमाल कर रहा है, और वो अपमानजनक शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि वो द्रोणाचार्य को दिखा दे कि देखो तुमने जिसको ट्रेनिंग दिया, किसे, अर्जुन को, जो इतना प्रिय शिष्य अर्जुन तुम्हारा, इतना कुछ तुम हर समय उसके विषय में बोलते रहते, वही अर्जुन सामने देखो सब अपना गांडीव, जो कि आप ही के द्वारा सिखाया गया कि वो कैसे उठाना कैसे चलाना, आप ही के सामने वो खड़ा है आप ही को मारने के लिए। तो ये उसके पीछे छिपा हुआ अर्थ है कि वो जो दिखा रहा है वास्तव में क्या दिखा रहा है, वो द्रोणाचार्य को दिखा रहा है कि देखो ये सारे तुम्हारे शत्रु बनकर, तुम्हारे मित्र है ना, तुम्हारे शत्रु बनकर खड़े हैं तुम्हारे सामने। ये और पांडु पुत्रेण, अब देखिए यहां पर वो पांडव भी कह सकता था, पश्यताम पांडवानाम वो ये भी कह सकता था, परंतु पांडु पुत्रेण कहा उसे। इसका अर्थ क्या है कि यहां पर द्रोणाचार्य को दुर्योधन याद दिला रहा है कि ये पांडु के पुत्र खड़े हैं, और पांडु जिन्होंने कभी कोई बहुत बड़ा युद्ध लड़ा ही नहीं, उनके पुत्र कि इनके पिता के अंदर कोई युद्ध कौशल था ही नहीं, स्वयं जो पांडु रोग से पीड़ित इसलिए वो नाम था पांडु रोग वहीं से आया, तो उनको वो पांडु रोग से पीड़ित और उनका वध भी कहीं जंगल में किसी ऋषि के श्राप से हो गया, कोई क्षत्रिय का वध रणभूमि पर होना चाहिए। तो यहां पर वो द्रोणाचार्य को याद दिला रहे हैं कि ये उनके पुत्र, कि ऐसे पिता के पुत्र खड़े हैं और इनकी हिम्मत देखो, ये आपके सामने खड़े हुए, आप जैसे आचार्य द्रोणाचार्य के सामने ये पांडु के पुत्र, तो पांडु के पुत्र कहकर वो बोल रहा है। पांडव भी कह सकता था परंतु नहीं, पांडु के पुत्र, तो पांडु की याद दिला रहा है द्रोणाचार्य को। और इतना ही नहीं, ये तो सबसे बड़ा प्रहार दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के ऊपर किया, द्रुपद पुत्रेण। कौन है द्रुपद पुत्रेण? दृष्टद्युम्न। यहां पर वो दृष्टद्युम्न कह सकता था, है कि नहीं? अब जैसे हम यदि किसी को बुलाते हैं, जैसे मान लो किसी का नाम है सुरेश, किसी का नाम है सुरेश और वो किसी शुक्ला जी का बेटा हो, तो कोई यदि उसे बुलाए, अरे शुक्ला पुत्र, यार मेरा नाम है तुम क्या शुक्ला पुत्र बुला रहे, तो थोड़ा अजीब लगता है ना, मेरा नाम बुलाओ सीधा। तो यहां पर दुर्योधन सीधा नहीं बोल रहा है दृष्टद्युम्न, वो कह रहा है द्रुपद पुत्रेण। दृष्टद्युम्न किसके पुत्र थे? द्रुपद के पुत्र। तो यहां पर दुर्योधन द्रोणाचार्य के सामने द्रुपद पुत्रेण क्यों कह रहा है? क्योंकि वो द्रोणाचार्य को याद दिलाना चाहता है द्रुपद और द्रोण के बीच में जो 36 का आंकड़ा बना हुआ था, है ना, वो याद दिला रहा है। और तुरंत द्रोणाचार्य को गुरुकुल के दिन याद दिला रहा है कि गुरुकुल में द्रोणाचार्य आप और ये द्रुपद, ये दोनों गुरुकुल में थे, और एक दिन बैठे बैठे दोनों में इतनी घनिष्ठ मित्रता कि बैठे बैठे द्रुपद जो कि पांचाल नरेश के पुत्र, तो द्रुपद ने द्रोणाचार्य को कह दिया कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो आधा पांचाल देश तुम्हें। तो द्रोणाचार्य हो तो एक गरीब से ब्राह्मण, तो उन्होंने पंखा नहीं चाहिए क्या आप लोग, तो बंद कर दीजिए, किसने चालू किया, यहां पर चाहिए पंखा, थोड़ा थोड़ा चाहिए। ये कौन सी नीति है, थोड़ा थोड़ा चाहिए। तो बचपन में फिर द्रोणाचार्य तो एक गरीब ब्राह्मण, तो द्रोणाचार्य एक गरीब ब्राह्मण, तो द्रोणाचार्य ने सोचा कि भाई क्या ये मुझे देगा राज्य, ये इतना बड़ा राजा का बेटा। परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बहुत ही सीरियसली बोल रहा हूं, ये गंभीरता से मैं बोल रहा हूं कि मैं वचन देता हूं आज कि मैं दूंगा। तो द्रोणाचार्य तो भूल गए, उन्हें पता था बड़े लोग बोलते रहते हैं, बहुत बोलते हैं बड़े लोग, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर बड़े हो गए और फिर द्रोणाचार्य उनका विवाह हुआ किससे, कृपि, कृपि कौन थी, कृपाचार्य की बहन थी। तो कृपि से विवाह हुआ द्रोणाचार्य का और उनसे पुत्र आया अश्वत्थामा। तो इतने गरीब थे द्रोणाचार्य कि अश्वत्थामा वो गुरुकुल में पास होकर बड़ा हो गया, परंतु अश्वत्थामा ने कभी अब तक दूध भी नहीं पिया था, उसे पता ही नहीं दूध होता क्या है, दूध नाम की कोई वस्तु भी है ये भी उसे पता नहीं। तो अश्वत्थामा के मित्र जानते थे, तो अश्वत्थामा के मित्र एक बार अश्वत्थामा की खिल्ली उड़ाने के लिए अश्वत्थामा को पूछते, अश्वत्थामा दूध पिएगा, अश्वत्थामा पूछता दूध ये क्या होता है, अरे दूध पता नहीं तुझे, दूध बहुत अच्छी वस्तु होती है, दूध पिलाते हैं तुझे दूध। तो उन्होंने क्या किया, चूना होता है चूना, चूना को पानी में मिलाया और चूने को पानी में मिलाकर अश्वत्थामा को कहा ये दूध बहुत अच्छा तुम्हारे सेहत के लिए, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा। तो अश्वत्थामा ने वो पिया और कहा कि ये तो बहुत बेस्वाद है, नहीं स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और फिर सभी हंसने लगे, खिल्ली उड़ाने, अरे ऐसा आज से कभी दूध भी देखा नहीं, पता भी नहीं दूध क्या होता। तो अश्वत्थामा रोते 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 रोते, जब ऐसे बच्चों के साथ होता है तो रोते रोते घर पे जाते ना, मम्मी 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 आज ये किया। तो अश्वत्थामा मम्मी मम्मी करते गया और जाकर वो कृपि से कहता है कि मुझे दूध पीना, मुझे कैसे तो दूध पिलाओ, असली दूध क्या है बताओ। तो अभी उनकी माता रोने लगी कि सोचिए कि पुत्र दूध मांग रहा है और माता दूध नहीं देख सकती। तो उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि कुछ तो करना होगा, दूध कहीं से तो लेकर आओ अपने पुत्र के लिए, कुछ तो करो, क्या ये ब्राह्मण बनकर यहां वहां केवल भिक्षा में नौकरी वोकरी करो। तो फिर द्रोणाचार्य कहे कि मैं भाई कहां से, मैं तो एक ब्राह्मण हूं, जो मिलता है मधुकरी में, ऐसा तो नहीं कि मैं घर में जाके उनसे कहूं कि थोड़ा एक लीटर दूध देना, अरे वो लोग जो देते हैं वो लेकर आता हूं मैं मधुकरी में जो मिल जाए, मैं ऐसे मांग थोड़ी सकता हूं कुछ। अरे तुम्हारे जो मित्र थे बचपन के, एक दिन मुझे बता रहे थे कि वो आधा पांचाल देश देने वाले थे, वो मेरे को आधा लीटर दूध तो दो। अरे वो बड़े लोग, वो लोग सब क्या ये सब बोलते हैं, वो थोड़ी अपने उस बातों पर अमल करते हैं ये लोग, नहीं जाओ जाकर कम से कम एक गाय तो मांग लो। तो द्रोणाचार्य को भेजा गया, तो द्रोणाचार्य गए वहां पर, गए तो इतना बड़ा राज्य और द्रुपद, तो जैसे ही द्रुपद ने अब द्रोणाचार्य को देखा तो द्रुपद तो पहचान गए, परंतु जाना अनजाना कर दिया, क्योंकि अब बाकी लोग क्या देखे, अरे इनके साथ दोस्ती है तुम्हारी, ये तुम्हारे बचपन के मित्र, तो ऐसे स्कूल में गए थे क्या तुम? तो ये नाम प्रतिष्ठा बहुत होती है ना, कि मैं बचपन में किसके साथ पढ़ा, किसके साथ मैंने स्कूलिंग किया, कौन से कॉलेज में मैं गया, वो नाम वगैरह सब देखा जाता है। तो द्रुपद फिर जाना अनजाना कर रहे थे, फिर इन्होंने पूछा कि भाई तुमने बचपन में ऐसे कुछ कहा था क्या? मैंने, अरे अपनी औकात देखी तुमने। द्रुपद कहते अपनी औकात देखो कि तुम इस अपराध के एक भिखारी ब्राह्मण और वो भी आधा पांचाल देश भाग को चलो। इस प्रकार से दुत्कार दिया तो द्रोणाचार्य को इतना क्रोध आया कि द्रोणाचार्य ने सोचा सबसे पहले तो ये, एक तो ये दूध क्यों बीच में आया है इसके लिए, अश्वत्थामा को दूध पीने के क्या हो गया अचानक और उसके ऊपर फिर ये द्रुपद के ऊपर इतना क्रोध आया कि फिर जैसे ही द्रोणाचार्य वो टीचर बने गुरुकुल के इन कौरवों और पांडवों के, एक ही कारण के वजह से कि इनमें से कोई एक तो निकलेगा जो इस द्रुपद को सबक सिखाएगा। और जैसे ही गुरुकुल की शिक्षा पूरी हुई कौरव पांडव की, तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि मुझे अब गुरु दक्षिणा चाहिए, कौन देगा तुम में से? तो अर्जुन सबसे आगे आए, ये पूछा भी नहीं कि क्या चाहिए आपको। तब द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन को कि वो द्रुपद के ऊपर आक्रमण करो और उसे मारना मत, उसे जिंदा बंदी बनाकर, एक जानवर की तरह बंदी बनाकर मेरे सामने खड़ा करो। तो अर्जुन जाते हैं और सोचिए अर्जुन जब द्रुपद को हरा देते हैं युद्ध में, अकेले अकेले जब हरा देते हैं, तभी द्रुपद ठान लेता है कि मेरी द्रौपदी का विवाह इसी के साथ करना है। तो अर्जुन का क्वालिफिकेशन सब कुछ वो देख लेते हैं सब कुछ, हाँ द्रौपदी के लिए यही फिट है, बंदी बने हुए हैं। तो वहां पर अर्जुन, क्योंकि अर्जुन से कोई बैर नहीं, ये अर्जुन को भेजा किसने है वो जानना है। तो जब पता लगा कि द्रोणाचार्य ने भेजा है और द्रोणाचार्य के सामने अर्जुन लाकर खड़ा कर देते हैं, ये गुरु दक्षिणा। कौन है गुरु दक्षिणा? मेरे ससुर। तो गुरु दक्षिणा मेरे ससुर, उनको लाके खड़ा कर दिया। तो अब द्रोणाचार्य, देखो उस जमाने में यदि किसी को अपमानित करना है या मृत्यु से भी ज्यादा बड़ा दंड देना है तो क्षत्रिय को अपमानित करो। और क्षत्रिय को अपमानित उस जमाने में देखो कैसे किया करते थे कि द्रुपद को बंदी बनाकर सामने जब वो खड़े हैं द्रुपद, तो द्रोणाचार्य कहते हैं तो द्रुपद आधा राज्य देने वाले थे ना तुम, और मुझे कहा कि क्या औकात है, मेरी क्या औकात है कि मैं तुमसे बराबरी कर ये आधा राज्य भी मांगू या यहां पर मैं खड़ा भी रहूं तुम्हारे सामने, यही शब्द कहे थे तुमने, तो अब मैं मेरी औकात सिद्ध करता हूं। मैं नहीं, मेरा ये एक शिष्य अभी अभी पास आउट हुआ, ट्रेनिंग कैंप से अभी अभी पास आउट हुआ, ये मेरा शिष्य, ये बंदी बनाकर लाया तुम्हें, और मैंने कहा था इसे मारना मत, बंदी बनाकर लाओ, तुम आधा क्या, पूरा राज्य अब तुम्हारा मेरा हो गया है। लेकिन हाँ तुमने सही कहा, हम दोनों की औकात बराबर नहीं, क्योंकि तुम इतने नीचे गिरे हुए और मुझसे क्या बराबरी करोगे। तो द्रोणाचार्य अब ये शब्द कह रहे, इसलिए द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम्हें मैं ये दिखाना चाहता हूं कि मेरे अंदर कितना दम है, और ये देखने के बाद अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा, जाओ वो ले लो, अपना राज्य ले लो और उस खिलौने से खेलते रहना जिंदगी भर, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कुछ भी। और ये सबको पता लगने वाला है कि तुम द्रुपद पांचाल नरेश, तुम्हारी क्या हालत हुई थी। तो सोचिए यदि कलयुग में ये हुआ होता तो अरे धन्यवाद, वो द्रुपद धन्यवाद कहकर बहुत अच्छा, अरे इतने अच्छे महात्मा कहां मिलेंगे। लेकिन द्रुपद खून उसका खौलने लगा और द्रुपद द्रोणाचार्य से कहता है कि मुझे मारो, जान से मार डालो, परंतु ऐसा दंड मत दो कि मुझे बंदी बनाने के बाद मुझ पर रहम कर छोड़ रहे हो। ये देखिए उस जमाने का उनका अभिमान क्षत्रिय का, कि मुझे तुम्हारा रहम नहीं चाहिए, तुम शस्त्र चलाओ मेरे ऊपर, परंतु ये रहम मत करो मेरे ऊपर। परंतु द्रोणाचार्य ने कहा, यही तो मैं तुम्हें देना चाहता हूं कि सारी दुनिया अब आगे चलकर यही चर्चा करे तुम्हारे बारे में कि मैंने तुम पर रहम किया और मेरे रहम के ऊपर तुम आगे की सांसें लोगे अब अपने जीवन की, तो हर एक सांस तुम्हारी जो होगी ना वो मेरे द्वारा दी जाएगी। क्या जाओ 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 खेलो, वो सिंहासन पर बैठकर खेलो, कूदो जाओ। ऐसा खोल रहा था इसका खून द्रुपद का, तो द्रुपद ने फिर ठान लिया कि इस द्रोणाचार्य का वध अवश्य मेरे द्वारा ही होना है। परंतु द्रुपद के अंदर इतना युद्ध कौशल नहीं था, तो इसलिए द्रुपद ने फिर एक यज्ञ किया और यज्ञ से द्रौपदी और दृष्टद्युम्न, और ये दृष्टद्युम्न विशेष रूप से इसीलिए दृष्टद्युम्न को पैदा किया था, एक ही कारण दृष्टद्युम्न को पैदा करने का, द्रोणाचार्य को खत्म करना। तो फिर जैसे दृष्टद्युम्न पैदा हुआ तो अब दृष्टद्युम्न की ट्रेनिंग कहा, द्रोणाचार्य से ही सीख के आओ, द्रोणाचार्य से सीख के आओ कि द्रोणाचार्य को कैसे मारना है। तो दृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य से सीखे सब कुछ युद्ध कौशल, और द्रोणाचार्य से सब कुछ सीखने के बाद सबको पता है कि द्रुपद ने दृष्टद्युम्न को क्यों पैदा किया, सबको पता है, द्रोणाचार्य को भी पता है, परंतु द्रोणाचार्य फिर भी वो दे रहे हैं वो शिक्षा दृष्टद्युम्न। तो यहां पर वो सब गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए दुर्योधन, वो सब कहानी जान रहा है, तो दुर्योधन वो सरकास्टिकली जो अंग्रेजी में कहते हैं व्यंग्यात्मक दृष्टि से वो द्रोणाचार्य को कहते हैं, वही आपके द्रुपद बचपन के जो आपको आधा राज्य देने वाले थे, वही द्रुपद का पुत्र ये दृष्टद्युम्न जिसे आपने ट्रेनिंग दी है, तब शिष्यण वो खड़ा हुआ वो आपका वध करने के लिए। तो इसलिए यहां पर क्रोध को उकसाने के लिए दुर्योधन क्या कहता है, वो तव शिष्येन आपका शिष्य दृष्टद्युम्न धीमता ऐसी बुद्धि लगाकर वो सेनापति बन गया, तो फिर आपने क्या ऐसे शिष्य को बुद्धि दी कि उसकी बुद्धि देखिए गुरु से ज्यादा। मतलब यहां पर दृष्टद्युम्न को धीमता या बुद्धिमान कह रहा है दुर्योधन, अर्थात एक तरीके से द्रोणाचार्य को मूर्ख बोल रहा है कि वो इतना बुद्धिमान है कि आपको मूर्ख बनाकर मारने के लिए खड़ा हुआ इतनी बड़ी सेना लेकर। तो एक दृष्टिकोण से ये सारे जो शब्द पश्य एतान पांडु पुत्राणाम द्रुपद पुत्रेण धीमता, ये सारे शब्द केवल एक एक बाण है, वाग बाण। और इसलिए कहा गया है कि जो वाग बाण होते हैं, जो जिह्वा से निकले हुए बाण होते हैं, वो सबसे ज्यादा तीक्ष्ण होते हैं, शार्प, सबसे ज्यादा तीक्ष्ण ये बाण होते हैं। और इसलिए जब किसी को वाग बाण से कोई मारता है तो वो जो चोट पहुंचती है वो कई जन्म तक बनी रहती है, और किसी को कोई साधारण बाण से मारे तो वो केवल उसका शरीर को खत्म करता है उस समय, परंतु वाग बाण उसे उसके मन में वो रहकर कई जन्मों तक उसका इंप्रेशन बना रहता है। तो यहां पर दुर्योधन के कापट्यपूर्ण शब्द इस प्रकार से हैं। अब दुर्योधन को यदि हम लें तो दुर्योधन देखिए अपने रथ से उतरकर, रणभूमि में अपने रथ से उतरकर वो द्रोणाचार्य के रथ के समीप जा रहा है। तो यहां पर दुर्योधन की आसक्ति या दुर्योधन का भय द्वेष ये हमें दिख रहा है। तो दुर्योधन के अंदर ये द्वेष पांडवों के प्रति इतना कूट कूट कर भरा है कि उसके वजह से उसके अंदर द्वेष के साथ साथ भय भी है। तो आसक्ति आसक्ति से भय और द्वेष ये दो की उत्पत्ति होती है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु से किसी स्थिति से आसक्त रहता है तो आसक्ति से वो उसे खो न बैठे इसलिए उसके अंदर भय उत्पन्न होता है। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति जिससे वो आसक्त है उसी के तरह या उससे ज्यादा कुछ हासिल कर ले तो द्वेष। तो ये जो दो भावनाएं हैं किसी के हृदय में भय और द्वेष की उत्पत्ति होती है आसक्ति से। तो हम भी यदि हमारे जीवन में देखें कि यदि हम किसी से द्वेष कर रहे हैं तो किसी से द्वेष कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हमारे अंदर आसक्ति है। अंग्रेजी में एक कहावत है जिसमें कहा गया है An envious person is that person who actually glorifies the person whom he envies, but in an indirect way. क्योंकि कोई दूसरे के प्रति द्वेषी कब होगा? जब उसके गुण को देखेगा, है कि नहीं? जैसे कि हम जब बराबरी वालों के साथ रहते हैं तो जब बराबरी वालों के साथ रहते हैं तब द्वेष पैदा होता है कि ये मेरे बराबर का और मुझसे ज्यादा इसे ऐश्वर्य मिल रहा है, परंतु जो हमसे बहुत ही नीचे उससे कभी द्वेष नहीं करेंगे। रास्ते पे चल रहे हैं, कोई भिखारी आ गया हमारी गाड़ी पर खटखटा रहा है तो उससे द्वेष करें? क्या क्या जीवन है इसका, देखो क्या घूमता रहता है लोटा लेके अपना बर्तन लेके। किसी भिखारी के प्रति हमारा द्वेष कभी नहीं रहेगा, परंतु बगल वाला कोई पड़ोसी या हमारे ऑफिस में काम करने वाला या स्कूल का कोई विद्यार्थी जब उसके पास थोड़ा सा ऐश्वर्य हमारे से बढ़ जाए या बढ़े भी नहीं परंतु आशा है बढ़ने की तो तुरंत अंदर द्वेष। तो वो द्वेष हो क्यों रहा है? क्योंकि हम आसक्त हैं उससे। जब आसक्ति छूट जाएगी तो कोई द्वेष नहीं रहेगा। और इसलिए हम देखते हैं कि कई बार छोटे छोटे बच्चे वो दूसरे बच्चों के साथ झगड़ा करते हैं, कुछ द्वेषपूर्ण व्यवहार करते हैं क्योंकि वो उसमें आसक्त है, खिलौनों में। तो खिलौनों में आसक्त है वो, तो जब दूसरा बच्चा उसके पास दूसरा एक और नया खिलौना आ गया तो यहां पर फिर वो द्वेषपूर्ण व्यवहार चालू होता है क्योंकि खिलौनों से आसक्त। और जो बड़े हैं वो लोग अचरज करते हैं कि क्या ये खिलौनों के पीछे इतना रोना धोना कर रहे हैं, और ये नहीं जानते कि जो बड़े हैं वो भी रोना धोना कर रहे हैं, खाली है कि उनके खिलौने दूसरे टाइप के हैं। तो यहां पर आसक्ति भय और द्वेष को पैदा करती है और द्वेष के द्वारा फिर कपट, कि जब हृदय में द्वेष पैदा होता है आसक्ति के द्वारा तो फिर व्यक्ति कपटी बनता है। जैसे दुर्योधन यहां पर द्वेष के द्वारा अब ये कपट का सहारा ले रहा है, और फिर जब व्यक्ति कपट का सहारा लेता है तो वो एक नीति चालू करता है, कूटनीति, एक फिलॉसफी चालू होता है, वो अपना एक संप्रदाय चालू करता है। और वो संप्रदाय क्या है कि उसके अंदर वो जस्टिफाई कर रहा है कि वो जो कर रहा है वो सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो यहां पर दुर्योधन वही कर रहा है कि वो द्रोणाचार्य को बता रहा है कि कैसे द्रोणाचार्य आप मूर्ख हो और ये बहुत बुद्धिमान है ये दृष्टद्युम्न। तो इसलिए यहां पर हमें ये समझना है कि दुर्योधन अपनी अधमता का सर्वोच्च शिखर पार कर दिया उसने। एक तो सभी दुर्योधन की तरफ देख रहे हैं कि तुम्हारे वजह से ये एक इसके वजह से ये इतना बड़ा युद्ध अब आयोजित हुआ है, और इतना ही नहीं ये सब होने के बावजूद दुर्योधन उतर कर और मिर्च मसाला लगा रहा है। इतना सब कुछ क्या कम था कि अब उतर कर और वो बोलना शुरू कर रहा है। तो इसलिए कूटनीति। अब द्रोणाचार्य इनको आचार्य क्यों कहा गया है, क्योंकि हमने चर्चा की कि इस श्लोक में द्रोणाचार्य की उदारता और दुर्योधन की अधमता इसके विषय में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले आचार्य की परिभाषा क्या है, आचरति इति आचार्य, कि जो आचरण में लाए अपने प्रचार को, कि जैसा आचार और जैसा प्रचार कर रहा है वैसा वो आचार करता है, खाने वाला आचार नहीं। तो जो अपने आचरण में लाए अपने प्रचार को उसे कहते हैं आचार्य। तो आचार्य का अर्थ ये नहीं कि कोई मठ का आचार्य बैठा हुआ बड़े सिंहासन पर वही आचार्य है, नहीं, हरेक मनुष्य आचार्य बन सकता है और हरेक मनुष्य को आचार्य बनना चाहिए। तो यहां पर द्रोण उनको आचार्य क्यों कहा गया है, द्रोण आचार्य क्यों कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो जैसा प्रचार किया वैसा उन्होंने आचार किया। और यहां पर विशेष रूप से जब दुर्योधन और द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं, उत्साह रहे हैं, द्रुपद पुत्रेण ये दृष्टद्युम्न, ये आपके सामने आपका ही शिष्य, तव शिष्येण धीमता बुद्धिमान, ऐसा कि इसने आप ही को मारने के लिए, और दृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए द्रोणाचार्य से ही शिक्षा ली, और शिक्षा लेने के पश्चात द्रोणाचार्य के पास जाकर दृष्टद्युम्न क्या कहता है, अब आशीर्वाद दीजिए आप, अब आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस के लिए पैदा हुआ हूं उस कार्य को मैं सफल करूं। और किसके लिए वो पैदा हुआ था, इन्हीं को मारने के लिए। और द्रोणाचार्य जानते हैं वो क्या कहते हैं, विजयी भव, बोलते हैं विजयी भव। तो इसलिए यहां पर हम दो व्यक्तियों के जीवन से हम लेकर देखेंगे कि कौन आचार्य है और कौन दुराचार्य। तो यहां पर कंस, कंस की भी स्थिति ऐसी ही थी कि कंस जिनके ऊपर कंस ने विश्वास किया इतना, किसके ऊपर, अपनी बहन के ऊपर, और कंस ऐसा व्यक्ति कि जब देवकी की शादी वो कर, उसने ही सब कुछ किया, वही जाकर वसुदेव जी से सगाई करवाई, और जो कुछ शादी के दिन जो भी व्यवस्था स्वयं कंस कर रहा था, और इतना वो प्रसन्न था कि मेरी बहन की शादी मैं करवा रहा हूं, और कि उसने अपनी बहन को अपने जीजा के घर छोड़ने तक खुद वो ड्राइवर बना, वो सारथी बैठा उसे पटक दिया, बाहर निकल तो खुद कंस वो रथ चलाना, पता नहीं उसे आता भी था कि नहीं, परंतु खुद उसने रथ चलाने का कार्य, मतलब वो जो युवराज जो आगे बनने वाला राजा, वो यहां पर ड्राइवरी का काम कर रहा है परंतु अपनी बहन के लिए। कंस देखिए इतना, और वो रो रहा था, होता ना विदाई के समय रोते ना, तो कंस रो रहा था। सोचिए कंस कैसे रोएगा, कल्पना कीजिए रोता हुआ कंस कैसा दिखेगा। तो रोता हुआ कंस वो देवकी और वसुदेव को और ढोल नगाड़ी सबके बीच में ले जा रहा है, और तभी आकाशवाणी, और आकाशवाणी भी ऐसे नहीं कि आकाशवाणी बहुत ही मधुर तरीके से कंस को समाचार सुना रहे, अरे मूर्ख। तो कंस देखता है कि ये कौन मुझे पुकारा, एक ही मूर्ख है। मेरा एक मित्र इस प्रकार से किया करता था कि जब बहुत से हम लोग एक साथ खड़े होते तो दूर से पुकारता था, अब देखो मैं यहाँ से जोर से पुकारूंगा, जो पीछे देखेगा उसका वो नाम, तो ऐसे ही पुकारता था, अरे मूर्ख, तो तीन चार पीछे देखते थे हाँ पहचान गए अपना नाम। तो जैसे आकाशवाणी ने चिल्लाया अरे मूर्ख, तो कंस यहाँ वहां देखने लगा, तो वो लोग कंफर्म कर लिया हाँ यही है, इसी को सुनाना है। तो फिर बोलने लगे अरे तुम जिसे ले जा रहे हो, इतनी सेवा कर रहे हो, उसी का आठवां पुत्र तुम्हें मारने वाला है कंस। और ये आकाशवाणी पूरी भी नहीं हुई कि ऐसा नहीं कि कंस वो बाकियों को कहने लगा फालतू बोलते रहते हैं कुछ, रेडियो की जो आकाशवाणी अपने ऑल इंडिया रेडियो की होती है उसमें तो कोई दम होता नहीं इतना ज्यादा, तो कंस ऐसा नहीं कि अरे चुप करो चलो चलो आगे चलते, नहीं कंस तुरंत वो वाक्य खत्म होने से पहले, आकाशवाणी खत्म होने से पहले कंस ने अपनी तलवार निकाल ली और देवकी की केश पकड़ ली। कितना, एक सेकंड से भी कम, एक सेकंड पहले कंस रोए जा रहा है प्रेमाश्रु अपनी बहन और अपने जीजा के प्रति, और यही कंस आधे सेकंड बाद वो वाक्य पूरा नहीं हुआ तलवार निकाल ली मारने के लिए। तो ये है कंस कि जब उसने अपनी मृत्यु का समाचार सुना तो सारी दुनिया गई भाड़ में, और यदि उस सारी दुनिया में मेरे भाई या मेरे जीजा या मेरी बहन जो भी कोई हो वो सब गए भाड़ में, मेरे जीवन को कोई मेरे शरीर को आंच नहीं पहुंचनी चाहिए। अब सोचिए कि उसे थोड़ी तो बुद्धि लगानी चाहिए कि वसुदेव रोक कर कंस को कह रहे हैं कंस रुको रुको, अरे आकाशवाणी ध्यान से सुनो, फिर से ध्यान में करो कि आकाशवाणी ने क्या कहा, देवकी का आठवां पुत्र कहा है, तुम देवकी को क्यों मार रहे हो। तो कंस भी रुक गया, ये भी सही बात है, वो सही में मूर्ख था। और वसुदेव वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, तो वसुदेव ने भी साम दाम दंड भेद अपनाकर कंस को और मूर्ख बनाया, जो पहले से था थोड़ा उसे पूरा कंफर्म 100% सर्टिफिकेट दे दिया वसुदेव जी, कहा कि भाई देवकी का आठवां पुत्र ना, तो देवकी को क्यों मार रहे हो। तो कंस भी रुक गया, परंतु उसने तलवार छोड़ी नहीं और देवकी के भी केश पकड़े हुए। तो यहां पर देखिए वसुदेव जी की क्या हालत हुई होगी कि शादी के दिन जिससे शादी हुई है, तो वसुदेव जी ऐसा नहीं कि अरे भाई तुम जानो भाई बहन मैं चला दूसरे, मथुरा में कोई और को ढूंढता हूं ऐसा नहीं वसुदेव जी उन्हें छोड़ दिए कि तुम आपस में ही मारते रहो एक दूसरे को। वसुदेव जी ने अंतिम क्षण तक प्रयास किया देवकी को बचाने के लिए, क्योंकि वसुदेव जी ने जब सुना कि देवकी का आठवां पुत्र विष्णु स्वयं कृष्ण, तो वसुदेव जी ने सोचा कि ये तो इससे बड़ी लॉटरी और क्या हो सकती है कि कृष्ण हमारे आठवें पुत्र बनने वाले हैं। तो वसुदेव वो प्रसन्नचित हो गए इसे सुनकर। तो यहां पर हमें देखने मिलता है कि एक ही आकाशवाणी, वसुदेव जी की क्या प्रतिक्रिया, कंस की क्या प्रतिक्रिया और देवकी की क्या प्रतिक्रिया। तो कंस वो मारने के लिए उतारू, और यहां पर द्रोणाचार्य, कंस के विपरीत द्रोणाचार्य को यदि लें तो द्रोणाचार्य यहां पर तो अब तक आठवां पुत्र पैदा भी नहीं हुआ, परंतु कंस इतना भयभीत कि तुरंत निकाल लिया तलवार मारने के लिए, और यहां पर द्रोणाचार्य के सामने जो मारने वाला व्यक्ति वो सामने खड़ा आशीर्वाद मांग रहा है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए आपको मारू मैं। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल आशीर्वाद दिया, विजयी भव, जिसके लिए तुम जन्मे हो वो तुम्हारा सिद्ध हो कार्य। तो यहां पर ये है द्रोणाचार्य की उदारता। इसलिए हालांकि दुर्योधन वो व्यंग्यात्मक दृष्टि से उन्हें आचार्य बोल रहे हैं कि आप है आचार्य, अरे आचार्यों के यही लक्षण होता है, यही लक्षण होता है आचार्यों का, यही लक्षण होता है आचरति इति आचार्य, कि जो द्रोणाचार्य ने अपने वाक्य कह दिए द्रोणाचार्य इतने उदार। तो यहां पर द्रोणाचार्य की उदारता और दुर्योधन की अधमता दर्शाई गई है। तो संजय भी देखिए यहां पर पहले दुर्योधन वो व्यंग दे रहा है और दुर्योधन के व्यंग्यात्मक शब्द संजय अपनी भाषा में धृतराष्ट्र को व्यंग्य तरीके से बता रहे हैं। तो इसमें एक व्यक्ति टॉन्ट मार रहा है और उसका टॉन्ट और उसमें थोड़ा ऐड कर टॉन्ट मार रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को, ये तुम्हारा पुत्र। राजा जिसे राजा तुम बनाने वाले हो, ये उसके करतूतें देखो कि अभी इतने से वो शांत नहीं हुआ कि ये लोग सब लड़ने वाले, उसमें भी जाकर वो और आग लगा रहा है और फूट डालने के लिए। तो इसलिए दुर्योधन अब इस श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक हर एक श्लोक में वो किन किन के पास जाकर क्या क्या कह रहा है, इसके पीछे उसके क्या क्या रहस्य हैं और क्या कहते हैं डबल मीनिंग दू अर्थ, क्या क्या दू अर्थ हैं, वो सब हम आने वाले श्लोकों में पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है आज के श्लोक के संदर्भ में जो हमने चर्चा की? हाँ मैंने तो नहीं दिया अश्वत्थामा नाम अश्वत्थामा हालांकि वो द्रोणाचार्य के पुत्र, परंतु अश्वत्थामा वो बहुत कुशल क्षत्रिय था और महाभारत में वर्णन है कि वो एक बहुत बड़ा रथी भी था, वो रथी और घुड़सवार दोनों था वो अश्वत्थामा। इसलिए उसे द्रोणाचार्य ने विशेष ट्रेनिंग उसने दी थी अश्वों के साथ कैसे युद्ध किया जाए, तो उसके संदर्भ में उसे इनाम हुआ है। अश्व का अर्थ है घोड़े, तो उसके संदर्भ में उसे इनाम मिला हुआ है उसका युद्ध कौशल विशेष रूप से अश्वों के संदर्भ में। तो धृष्टद्युम्न ने मारा कपट, हालांकि वो कपट नहीं था, वो बाहरी तौर से कपट दिख रहा था, परंतु जो अंतिम बाण जिसने तलवार जिसने चलाई वो धृष्टद्युम्न ने ही चलाई द्रोणाचार्य के ऊपर, क्योंकि वो उसी के लिए तो पैदा हुआ। तो सभी बोले भाई तुम इसके लिए तो पैदा हुए, इतने टाइम से इतना ट्रेनिंग तुमने लिया, लो तुम तलवार लो तुम जाओ। तो आपका प्रश्न क्या था कि किसने मारा? नहीं नहीं दृष्टद्युम्न यदि द्रोणाचार्य सारे शस्त्रों के साथ रहते तो दृष्टद्युम्न कहीं पर आसपास भटक भी नहीं सकता था मारने के लिए। दृष्टद्युम्न के अंदर इतना युद्ध कौशल नहीं था कि वो द्रोणाचार्य को हरा सके मार सके, इसलिए ये सब को योजना करके दृष्टद्युम्न को खाली लास्ट में कहा कि अब चलो तुम ले लेना सर्टिफिकेट। कौन सा शराब था? शराब ने पहले शराब बताओ, कौन सा शराब बोल रहे हैं? नहीं, क्योंकि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था सोते हुए, इसलिए अश्वत्थामा को तो द्रौपदी ने रहम कर छुड़वा दिया अश्वत्थामा को, नहीं तो भीम तो कचुम्बर मलाने वाला था अश्वत्थामा का वहीं पर। हाँ, कौन? आसक्ति, जैसे हमने इस उसका क्रम बताया, आसक्ति से द्वेष। आसक्ति जब होती है तो आसक्ति जब पूरी होती है तो भय, कि वो जिस वस्तु के प्रति आसक्त हूं यदि वो मिल गई वस्तु तो फिर भय कि वो कहीं छूट ना, और जब वो नहीं मिलती वस्तु तो द्वेष। तो द्वेष की शुरुआत है आसक्ति से, तो उसे वहीं से निपिंग एट द बर्ड, वहीं से उसे निकालना है। तो आसक्ति कम होगी, जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा था कि किसी व्यक्ति को ट्रक से बांधा हुआ, ट्रक के पीछे वो व्यक्ति को बांधा हुआ है, और वो ट्रक ऊपर नीचे इतने रफ्तार से जा रहा है, उसके पीछे पीछे ये भी घसीटा जा रहा है ये व्यक्ति। तो अब ये बेचारा घसीटा जा रहा है तो ये सोच रहा है कि मैं कैसे ये सब मेरी जो दुविधा है इसे रोकूं, तो ट्रक को रोकना होगा, तो वो दोनों को खींच रहा है ट्रक को रोकने के लिए, क्या करना है उसे? बस डोरी को कट करना। परंतु उसे लगता है यार इतनी अच्छी डोरी कट के चेको, तो जब तक वो डोरी से बंधा हुआ होगा तब तक वो ट्रक की रफ्तार पर घसीटा जाएगा। तो अक्सर लोग करते क्या है, डोरी को नहीं काटते, वो डोरी को खींचते हैं ट्रक को रोकने के लिए, है ना। तो इसलिए छिद्यंती सर्व संशय भागवतम कहते हैं कि हमें इस ज्ञान की तलवार को लेकर उस डोरी को काटना है। तो आसक्ति कटेगी, अपने आप भय और द्वेष कट जाएगा। और कोई प्रश्न? हाँ, थोड़ा जोर से। कंस ने ठीक किया कि गलत किया अपनी स्वयं की रक्षा? नहीं, देखिए कंस ने अपनी रक्षा सही तरीके से नहीं की। अपनी रक्षा करना वो कोई गलत बात नहीं है, परंतु उसने अपनी रक्षा सही तरीके से नहीं की। वो द्रौपदी अपना देवकी को मारकर वो अपनी रक्षा करना चाहता, जबकि द्रौपदी का 8वां पुत्र यदि वो सही में क्षत्रिय है तो उसे द्रौपदी के 8वें पुत्र के साथ अपना प्रतिशोध करना था, न कि देवकी के साथ, न कि देवकी के साथ। तो इसलिए वो सही क्षत्रिय की भूमिका नहीं निभा रहा था। जो सही क्षत्रिय है वो शत्रु का अपना सामना करता है। नहीं, एम्बिशन नहीं, एम्बिशन तो अलग हो गया, या अटैचमेंट। आसक्ति का अर्थ है अटैचमेंट, और वो भी अटैचमेंट टुवर्ड द नेगेटिव साइड, उसे आसक्ति कहते हैं। हाँ, राइट वर्ड, दैट इज द राइट वर्ड। हाँ, उसकी कहानी है ना, उसकी कथा है, उसकी कथा है ना। जब नहीं 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 वो ऐसा है कि देखो, सबसे पहले तो देवकी और वसुदेव, उनकी जो उत्पत्ति हुई पुत्रों की, वो कोई स्त्री पुरुष के संग से जो पुत्र की उत्पत्ति होती है वैसे नहीं, उस प्रकार से नहीं। और कंस इस बात को जानता था, कंस इस बात को जानता था कि ये जो विष्णु हैं, इनको मैं अलग भी रखूंगा तो भी ये विष्णु पैदा होने ही वाले। कंस जानता था कि विष्णु वो भगवान है, तो कंस ऐसा असुर था विष्णु को भगवान मानते हुए मारना चाहता था, ये उसका स्टैंडर्ड था। और जब कंस, उसने जब ये सुन लिया, आकाशवाणी हो गई, तो फिर वसुदेव ने जब कह दिया कि भाई आठवां पुत्र है, छोड़ दो, ये सब कुछ हो गया उनका, डिबेट होने के बाद, आर्गुमेंट के बाद छोड़ दिया कंस ने। तो उसके बाद फिर नारद मुनि ने सोचा कि अरे भाई, ये कंस ने तो छोड़ दिया, तो भगवान तो जल्दी अवतरित होंगे नहीं। कंस जब तक अत्याचार नहीं करेगा तब तक भगवान जल्दी अवतरित नहीं होंगे। तो नारद मुनि जाते हैं कंस को उकसाने के लिए, ताकि वो अत्याचार करे ताकि भगवान जल्दी अवतरित हो। तो नारद मुनि जाते हैं कंस के पास, कंस बैठा है, नारद मुनि कहते हैं कंस तो शांति से बैठा, शर्म नहीं आती तेरे को? क्या हुआ? अरे आकाशवाणी हुई है कि देवकी का आठवां पुत्र तुझे मारने वाला है और तुम आराम से बैठा। आठवां पुत्र मारने वाला है ना, तो क्या हुआ? तो बहुत टाइम है, तो पहला भी नहीं हुआ। तो फिर नारद मुनि, वो एक कमल का पुष्प जिसके अंदर 8 पंखुड़ियां, वो पुष्प लेकर कंस को दे रहा है, गिनो पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी, गिनो। वो कंस गिनने शुरू कंस गिनना भी शुरू करता है। कंस सोचता है क्या मुझे गिनती आती नहीं? नारद ने गिनो गिनो बताओ कौन सी पहली कौन सी 8वीं, 1 2 3 4 5 8 ये पहली 8। फिर नारद मुनि ने घुमा दिया, आप बताओ कौन सी पहली। फिर नारद मुनि ने इस प्रकार से कंस को कंफ्यूज कर दिया, बोला कि कहां से कौन सी गिनती शुरू कर रहे हो तुम? अपनी गिनती कर रहे होगे, परंतु वो जो देवता लोग हैं उनकी गिनती अलग होती है, उनका वो अलग स्कूल में मैथ पढ़ते हैं। तो यहां से भी बीच से कौन सा भी 8वां हो सकता है। और इसलिए, और कंस क्या है, कंस हालांकि वो असुर था, परंतु कंस क्यों उसने देवकी और वसुदेव को एक और कारण की वजह से एक साथ रखा, क्योंकि कंस वो विष्णु को पैदा होने देने वाला था, चाहता था कि वो होने पैदा होने चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा क्षत्रिय था, उसके अंदर क्षत्रिय के गुण थे कि मैं वो पैदा होने के बाद में ठीक है उनको ललकार के मारूंगा मैं। उस समय तो कंस ने जब तलवार बाहर निकाल ली, तो वो उस समय क्या बोलते हैं, स्पर ऑफ द मोमेंट, उसे अपने आप को बचाने के लिए उसने निकाली, परंतु वो लोगों को दिखाना चाहता था कि हाँ मैं इनको एक साथ रखूंगा ताकि ये लोग पैदा करें और फिर मैं, सब लोग देख लेंगे कि देखो कंस में भी दम है, इसने इनको साथ में रख के पैदा करवा के फिर मारा। तो एक क्षत्रिय है वो भी कंस जैसा, उसको मान सम्मान की बहुत चिंता रहती है कि अगर वो अलग कर है तो डर गया ये क्या कंस फिर से वो, और वो था ही ऐसा कि उसे वसुदेव ने बोल के छोड़ दिया, नारद मुनि ने कमल दिखा दिया, फिर वापस शुरू हो गया। क्योंकि जो भी ये वर्णाश्रम है, ये पैदाइश कोई व्यक्ति किसी वर्ण का नहीं होता, उसके गुण और कर्म, भगवान कहे हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, कि वो व्यक्ति अपने गुण और कर्मों से से निर्धारित होता है कि वो क्षत्रिय है या जो भी है, ब्राह्मण है या वैश्य है। जैसे कि विश्वामित्र मुनि वो क्षत्रिय, परंतु उन्होंने ये उल्टा, द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण और क्षत्रिय काम कर रहे हैं, और विश्वामित्र मुनि एक क्षत्रिय वो एक योगी और एक ब्राह्मण का काम करेंगे। तो गुण और कर्म के ऊपर निर्धारित है, वो किसी के जन्म के ऊपर इतना निर्धारित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जन्म के ऊपर निर्धारित कि कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है तो उसे ब्राह्मण का ही काम। खैर उस जमाने में, आजकल तो जन्मना जायते शूद्र, सभी शूद्र, जन्म उसी स्तर से शुरू होता है और उसके बाद में हो सकता है कि वो फिर कुछ अपने गुण और कर्मों के द्वारा कुछ बन सके। The question is that, प्रश्न है कि द्रुपद ने खुद क्यों नहीं द्रोणाचार्य का वध किया, क्योंकि द्रुपद उनके पास इतना युद्ध कौशल था नहीं। वो जानते थे कि द्रोणाचार्य का जो युद्ध कौशल है, ही इज मोर क्वालिफाइड इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग, और दृष्टद्युम्न को पैदा ही इसलिए किया था। तो एक ही उद्देश्य था उनका पैदा होने का, कि द्रोणाचार्य का वध करने के लिए। इसलिए तो देखिए, अब अर्जुन भी तो द्रोणाचार्य के ही शिष्य थे, तो अर्जुन भी अपने गुरु के विरोध में ही खड़े थे, तो इसलिए युद्ध भूमि में वो लोग अपने पारिवारिक संबंध या बाहरी संबंध को नहीं देख रहे थे। क्षत्रिय, सभी क्षत्रिय अपने आप को मान रहे थे। सो ऑन अ बैटल फील्ड अ क्षत्रिय ही डजंट केयर वेदर हु इज माई गुरु, हु इज यू नो माई ब्रदर, और हु इज हु। यू विल आई विल स्पीक अबाउट सम अदर पास्ट टाइम्स वेर इन अर्जुन एंड युधिष्ठिर, अर्जुन वॉन्टेड टू किल युधिष्ठिर बिकॉज ऑफ सम रीजन, एंड ही वॉज ओनली रीजन वॉज ही वॉन्टेड टू फॉलो इज क्षत्रिय धर्म, ही हैड टेकन अ वाउ, Anybody who chastises my Gandiva bow, speaks anything ill about my Gandiva bow, I am going to kill that person. Yudhishthir had once told Arjun, "Tum bhej do yaar is Gandiva ko, kya kaam ka tumhara?" He pulled out, he wanted to kill Yudhishthir. So for a Kshatriya during those times, his vow of a Kshatriya that on a battlefield was much more superior to any of these relations. No, it's not demeaning, it is glorifying the Kshatriya principle, that they don't care about any of those other principles. They are so much, you know, loyal. It glorifies them. Kaliyug mein to sab ulta hai. Ki yadi Kaliyug mein yehi Kurukshetra ki ranbhumi hoti, to yahan par to kitne to ghus khila khila ke ho jata tha. Ki दुर्योधन सबसे पहले दुष्टदुम्न के रथ के पास जाता था, कितना चाहिए यार तेरे को बोल। तो कलयुग की तो ये स्थिति है, मोर डिग्रेडेड, मोर डिमीनिंग एंड लो क्लास इज दिस, या दैट्स व्हाट सी ऑल द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द टीचर इज देयर व्हेन द टीचर इज नॉट स्टैंडिंग एज अ क्षत्रिय इन फ्रंट ऑफ यू। नहीं नहीं, उनकी जो सेना की व्यूह रचना चक्रव्यूह की थी, नहीं वो उनका जो मेन पूरे कौरव सेना की जो व्यूह रचना वो चक्रव्यूह की थी। नहीं, चक्रव्यूह की रचना जो थी, चक्रव्यूह की रचना वो अलग अलग स्तर पर थी। तो जब अभिमन्यु को मारना था, या अभिमन्यु को नहीं मारना था, बल्कि अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में चले गए थे, तो उस समय वो उसकी जो उस स्तर पर चक्रव्यूह की रचना की थी उसमें अभिमन्यु बाहर भी नहीं निकल सकते, मतलब अलग अलग लेवल्स की वो व्यू रचना थी। चक्रव्यूह की रचना हाँ पहले दिन से थी, परंतु अभिमन्यु का जब वध हुआ उस समय जो उसका इंटेंसिटी था व्यू रचना का वो सबसे इंटेंस था। हाँ अंतिम प्रश्न, हरे कृष्ण बोलिए। वही शास्त्र ने बताया ना, हम पैदाइशी शूद्र हैं सब, जन्मना जायते शूद्र संस्कार भवे द्विज, कि संस्कार से हम हो सकता है कि द्विज ब्राह्मण का पद हासिल कर रहे। वेद पाठ भवे द्विप्र ब्रह्म जाना दीति ब्राह्मण, तो हमारी स्थिति क्या है चैतन्य महाप्रभु ने बता दी कि न तो हम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ न ये चार वर्ण आश्रम में कहीं पर भी हम कुछ नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, गोपीर भरतो पद कमल और दास दास, ये हमारी स्थिति। उन्होंने हमारा पहले से ही, हम अपनी स्थिति बनाने से पहले उन्होंने बता दिया कि तुम अपना डेजिग्नेशन लेने से पहले मैं दे देता हूँ, ये है हमारा डेजिग्नेशन। लास्ट ठीक है। क्योंकि कंस को मारने के लिए तो भगवान अवतरित हुए, तो आकाशवाणी वो भगवान ने ही देवताओं को कहा कि आकाशवाणी कर कंस को बताओ मैं आ रहा हूं। भगवान ऐसे छिप कर नहीं मारे कंस को, बताकर मारे कि मैं आ रहा हूं बताने के लिए, तुमको मारने के लिए बताओ। हाँ वो तो बहुत बड़ा राक्षस, उसके वजह से तो पूरी पृथ्वी त्रस्त थी, इसलिए तो पृथ्वी देवी जाती है ब्रह्मा जी के पास कि ये कंस जो इतना अपना पाप कर रहा है तो ये पाप कम करने के लिए, तो उसके पाप की वजह से पृथ्वी देवी गई ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी फिर विष्णु के पास और फिर भगवान आए अवतरित हुए। तो सबसे बड़ा कारण भगवान का अवतरित होने का इस कंस को मारने का था, पापी था बहुत बड़ा वो। क्यों आपने कुछ उसके बारे में अलग सुना है? क्या क्या महाभारत? हाँ नहीं नहीं महाभारत तो अलग है, कृष्ण की लीला वो अलग है। कृष्ण और महाभारत का संबंध केवल कृष्ण और पांडवों के साथ है, तो पांडवों का कंस के साथ कोई संबंध नहीं था, वो तो कृष्ण अलग से कंस को देखने के लिए आए थे, तो महाभारत का कंस का कोई संबंध नहीं, कंस का कृष्ण के साथ है संबंध, महाभारत का उसमें संबंध है। हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते शरीर विद्या जुड़ेन्द्रिय कालिका जीवे पेले विषय सागरे तारमध्यजी भारती लोभमय सुदुर्मती